कामयाब लोग।
मैंने तुम्हारे लिए मछली खरीदी है और तुम्हारे सामने ही इसकी सफाई करूंगा। बिल्कुल साफ इस तरह बनाऊंगा कि खाने का दिल करे। तुम अभी तक सोई क्यों नहीं?
नींद आंखों से उड़ गई है।
बताओ तो, क्या किसी से इश्क हो गया है जो तुम्हारी आंखों से नींद गायब हो गई है?
मेरी आशिकी की कहानी इन 60-70 बरसों की उम्र में अब गुजर गई। जब मैं 9 साल की हुई, जब से फराइज वाजिब हुए, तब से इस सुबह की अजान ने मेरे लिए माने हासिल कर लिए। सुबह की अजान की बात ही अलग है, वो एक अलग ही चीज है। ये एक अलग ही चीज है जो 70 सालों से अल्लाहु अल्लाहु अकबर की आवाज के साथ मेरी आंख खुलती है और इंतजार की घड़ियां खत्म होती हैं। माशूक की आवाज पहुंचती है और आशिक सदते में सर रख देता है। तुम क्यों नहीं सोए? तुम किस माशूक की आवाज पर सजदा करने का इंतजार कर रहे हो? रोया की आवाज पर? परवेज शाइस्ता की बेटी, क्या मैं यकीन करूं कि तुम उसके आशिक हो? मेरे बच्चे, कीना इंसान को कहां तक ले जाता है? इश्क में धोखा, चिड़िया को बुलबुल का रंग देकर बेचना, खुदा और जमीर से आंखें मूंद लेना।
नरगिस जान, तुम इस कदर वजन क्यों हो गई?
क्या तुम खुद से वजन नहीं हो? तुम्हारी आंखों में इतना दम नहीं है कि मुझे धोखा दे सके। तुम खुद को किस तरह धोखा दे रहे हो? तुम अपने दिल में छिपे कीने को रोया के जरिए परवेश शाइस्ता से बदला लेना चाहते हो। उठ के चले जाने से क्या तुम्हारा झूठ सच हो जाएगा?
अब बस भी करो नरगिस जान, तुम्हें तुम्हारे जद का वास्ता।
मुझे मेरे जद की कसम, क्या तुम उस मासूम रोया को शाइस्ता से बदला लेने के लिए कुर्बान नहीं करना चाहते? क्या तुम उसका गला रेतना नहीं चाहते? शाइस्ता की उस पैसे की बर्बादी में जो तुमने बताया था, क्या तुम शामिल नहीं?
नहीं।
कुछ मत कहो, अपनी आंखों को बोलने दो। पलटो और मेरी तरफ देखो।
मैं शामिल नहीं हूं।
तो बताओ, तुम्हारा भाई अहमद रजा कहाँ है?
नहीं जानता।
नहीं जानते हो, इसीलिए लोगों का सर फोड़कर भागते फिर रहे हो। नहीं जानने की वजह से पुलिस से पीछा छुड़ाकर भाग रहे थे?
नहीं मालूम।
कबूल कर लो, मैं कोई वजह नहीं समझता कि तुम्हारे इस ना जानने को मान लूं, लेकिन कहते हो तो मान लेता हूं, कम से कम कुछ देर के लिए। अगर नहीं जानते तो सोचो, ख्याल करो कि तुम्हारा भाई अहमद रजा कहाँ है। मैं इंतजार कर रहा हूं।
वो मर गया है।
ये भाई की मौत के आंसू हैं या भाई को मारने के?
क्या एक भाई के बदन से निकलता हुआ खून देखा जा सकता है? नहीं, मालूम है कि नहीं।
अच्छा, आपने जज्बात जाहिर करने का मौका तुमको दिया,
पानी भी पिला दिया, अब अपना मुंह पोछो और मेरी बात सुनो। अच्छी तरह सुनोगे तो समझ जाओगे कि कहां और क्या जवाब देना है। तुम्हारा भाई अहमद रजा कहां है?
उसका पता नरीमान से मालूम करना होगा।
नरीमान कौन है?
मेरी एक बस का ड्राइवर है।
अहमद रजा का पता उससे क्यों मालूम करना चाहिए?
क्योंकि उस आखिरी रात को वही उसके पास गया था ताकि अहमद रजा को मना सके।
किस बात पर मनाने के लिए?
ताकि मैं उस जमीन को जिसे मेरे बाप ने अपनी जिंदगी में अदारे तालीम को उस पर मदरसा तामीर करने के लिए वक्फ कर दिया था, ताकि उनकी मौत के बाद हासिल कर सकूं।
अहमद रजा वापस करने को तैयार नहीं था?
नहीं नहीं।
क्यों क्यों?
क्योंकि हमारे वालिद ने वसीयत की थी कि वापस ना लिया जाए।
वसीयत जबानी थी या तहरीर में?
जबानी भी थी और तहरीर में भी।
फिर तुमने वसीयत पर अमल क्यों नहीं किया?
मैं अमल नहीं कर सकता था, वो जमीन कोई सस्ती और मामूली नहीं थी।
कि मैं उससे गुजर जाऊं और वो मेरे हाथ से चली जाए। 3,000 मीटर जमीन थी, मेरे वालिद को पुष्ट दर पुष्ट होती हुई मिली थी।
मैंने अहमद रजा को कहा था, नहीं मेरे भाई, नहीं अहमद रजा, तुम्हारा खुद का मुस्तकबिल है, तुम्हारी बीवी का मुस्तकबिल है, उसको जिंदगी चाहिए। मैं उसको तैयारी कर रहा था कि बाप की वसीयत से उसका ध्यान बढ़ जाए, तभी उसकी बीवी ने आकर कह दिया कि वालिद की वसीयत पर अमल करो और हलाल हराम का ख्याल रखते हुए फर्ज पूरा करो।
और जब उसने तुम्हारी चाल कामयाब नहीं होने दी तो तुमने उसका सर पानी में डुबाकर मार दिया ताकि अंगूठे का निशान लगवा सको?
नहीं जनाब, मैं ऐसा नहीं हूँ। नारीमन ने कहा था मैं उसको तैयार कर लूंगा।
उसने कहा था जिस आदमी से जमीन का मामला करने का वादा किया है उसको तोड़ो मत, सब काम नरीमान ने किया है।
तुम्हारे बकौल उस नरीमान ने यह काम क्यों किया? अहमद रजा की मुवाफिकत से उसको क्या फायदा होने वाला था?
मैंने उसको कहा था कि अगर अहमद रजा को तैयार कर लिया तो बस का एक तिहाई हिस्सा उसके नाम कर दूंगा,
मगर उसको तैयार न कर सका, इसलिए नौबत उसको थप्पड़ मारने की आ गई।
जब मैंने उसको थप्पड़ मारा कुछ भी नहीं बोला और चला गया। मैंने नरीमान को बोला कि अब बस को भूल जाओ, जमीन को भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ,
मगर उसने कहा कि अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है। उसने कहा मैं सब ठीक कर दूंगा,
क्योंकि उसको एक तिहाई हिस्सा चाहिए था। ठीक है ना?
हाँ, उसने कहा मुझे बस 2 घंटे का वक्त दो, कहा जमीन के बारे में कस्टमर से कल का किया वादा भी ना तोड़े। आधी रात का वक्त था जब मैंने नरीमान को फोन की। मैं चाहता था कि सूरत हाल वाजे हो सके।
मैं जानना चाहता था कि जमीन के बारे में जो कस्टमर से वादा किया है उसका क्या करना है, पता चल सके। कई मर्तबा फोन किया, तब कहीं जाकर नरीमान ने फोन का जवाब दिया।
कहने लगा अहमद रजा तैयार नहीं हुआ, कहने लगा मूर्ख की एक टांग है। मैंने भी कहा जहन्नम, जहन्नम में जाए, और फोन पटक दिया। दोपहर का टिकट था और फिर आखिरकार मैं कुवैत के लिए रवाना हो गया। कहा जहन्नम में जाए भाई और भाई का रिश्ता। फिर मैं चला गया, तब का गया। परसों जब वापस आया, जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो देखा उसकी बीवी मेरे सामने बैठी। कहने लगी अहमद रजा नहीं है, कहा वो कहीं गुम हो गया है। मुझे नरीमान से डर लगा जनाब। उस रात जब वो फोन पर बोला कि वो तैयार नहीं हुआ, मैंने सोचा कहीं उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा ना हुआ हो, आपस में उलझे ना हो, और कहीं उसने उसको मार के फेंक ना दिया हो। जनाब,
अपने बाप की वसीयत का क्या किया?
उसको जलाकर राख कर दिया।
जनाब सलीम बाबाई, माल दुनिया में कुछ कम नहीं है तुम्हारे पास। ये सब गंदगी ज्यादा माल हासिल करने के लिए है। क्यों? बस पैसा,
पैसा।
मोहतरमा, आप किसी नरीमान नाम के आदमी को जानती हैं?
हाँ जानती हूँ। वो बचपन से लेकर जवानी तक अहमद रजा का दोस्त था, मगर एक जगह जाकर उनके रास्ते अलग हो गए। अहमद रजा जब कभी नरीमान की बातें करता तो कहता कि उसे अपना माजी पसंद है, कहता काश आज भी माजी की तरह खूबसूरत होता, बिल्कुल हमारे बचपन की तरह, हमारी जवानी की तरह। कुछ हुआ क्या जनाब सादिकी?
सलीम, वही आपके शोहर के साथ जमीन के मामले पर उठे झगड़े के बारे में बता रहा था। नरीमान सलीम को जमीन पर ले जाता है ताकि अहमद रजा से बात कर सके। उसी रात से सलीम के घर से फिर अहमद रजा को नहीं देखा गया। एहतमाल है कि अहमद रजा मर गया हो।
तरमा तुम्हारा ध्यान किधर है? ये सड़क है, इधर देखो। ये तुम लोग हो जो हम लोगों को मुसीबत में डालते हो। ये क्या मुसीबत है?
इस सलीम के पास भी बिल्कुल शाइस्ता की गाड़ी की तरह नीले रंग की एक गाड़ी है।
नहीं, ये उसका काम नहीं है। अहमद रजा के गायब होने में उसका हाथ नहीं है। उसका गायब होना जरूर किसी लालच का नतीजा है। हमें एक धोखेबाज मुजरिम को तलाश करना होगा या एक बेगुनाह मकतूल को जिसकी बीवी ने उसको हलाल हराम पहचानना सिखाया है। और अब ये नरीमान,
इस कदर मत सोचो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। कल रात तुम्हारे और डैड के बीच में जो कुछ भी हुआ, तुम उसको भुलाने की कोशिश करो।
कल रात के डैड के वाकये ने मेरी फिक्र को मशगूल कर रखा है। उसका याद करना भी मुश्किल है। ये कि वो मुझे अपने घर से निकाल रहे थे, फातिमा के सामने, उसकी माँ के सामने, थोड़ा शर्मिंदा हुआ, मगर अचानक उनके रवैये में इस कदर सख्ती क्यों आ गई? वो उलझ के रह गए हैं। उनके हालिया फैसले में बहुत सी गलतियां हैं। वो अपनी पोती को आखिर देखने क्यों नहीं आते? क्यों उससे प्यार नहीं करते? इन्हीं सब बातों ने मेरी फिक्र को मसरूफ कर रखा है। लेकिन अभी की सोच आने वाले एक फोन के बारे में है जिसने मुझे उलझन में डाल रखा है।
कौन सा फोन?
डैड की जमीन के चौकीदार ने फोन किया था। पहले तो फोन किया था तो डैड का मोबाइल बंद था, फिर घर के फोन पर किया तो मैंने उठाया था। कहा, उसने कहा वक्फ बोर्ड से लोग आए हैं और डैड की जमीन को तार से घेर रहे हैं।
डैड की जमीन को?
और उनको नोटिस भी भेजने वाले हैं।
आखिर क्यों?
इसलिए कि डैड की जमीन वक्फ बोर्ड की है। इसका मतलब समझते हो? मतलब यह है कि मेरी और समसामी अंकल की सारी उम्मीद के उस जमीन को बेचकर कर्जदारों से डैड को छुट्टी दिलाएं हवा हो गई। रॉयल डैड दिवालिया हो चुके हैं, एक ऐसे दिवालिया जिनसे 500 घराने वाले पैसे मांगते हैं। इसका मतलब जानती हो क्या है?
डैड को पता है?
डैड से पहले समसामी अंकल को बताना होगा, कुछ ना कुछ करना होगा।
हेलो,
मैंने उठा लिया है, तुम फोन रख दो।
जी अच्छा।
बोलो।
आपका मोबाइल बंद है मामू?
मतलब की बात करो।
वो बूढ़ों के आशियाने को ढूंढ लिया है।
ठीक है, वहां जल्दी पहुंचो। वहीं आशियाने पर नरगिस नाम की एक बूढ़ी औरत का पता करो।
नरगिस?
नरगिस बुजुर्ग मेहर।
नरगिस? बताओ क्या वही नरगिस?
हाँ, वही हमारे बच्चों की दाया। उसकी आखिरी खबर यह थी कि वो अपनी मौत के इंतजार में है। तुमको इत्मीनान करना होगा कि वो जिंदा है या मर गई। अगर मर गई है तो इत्मीनान करो। जानते हो कैसे? उसकी कब्र की तख्ती देखनी होगी, समझे?
हाँ मामू।
तुमने सुना मैंने क्या कहा?
सुन लिया है। आपको हुआ क्या है? इस कदर परेशान क्यों है?
मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ।
आओ आओ, आज का पहला सबक मैं पढ़ाती हूँ। ये चावल जो मैं शुमाल से लाई हूँ, उसकी अहमियत को जानो। उसका पानी ना निकालो, बगैर पानी निकाले पकाओ। बिना पानी निकाले पकाने का मतलब इसकी अहमियत को जानती हो। उसकी खुशबू, उसकी खुशबू चाह घरों के पार तक जाएगी, फूल कर बड़ा और लंबा हो जाएगा।
क्या हुआ है तुम्हें?
कुछ भी नहीं, बस डैड से थोड़ी बहस कर ली। हेलो, सलाम कावे, डैड भी आ गए। सलाम डैड।
सलाम।
अगर आपको देर नहीं हो जाएगी तो क्या आप मुझे यूनिवर्सिटी तक छोड़ देंगे?
जब मेरा नाम लिखा है तो फिर उसको किसी और को मेरे अलावा खोलने का हक नहीं है, इसका मतलब यही है ना?
जी। क्या हम भी मधु हैं?
पहले मुझे ऑफिस छोड़ो।
डैड, क्या खबर है?
कुछ नहीं।
आपकी जमीन के बारे में कुछ खबर है? हाल ही में क्या जमीन का मुआयना किया है? उन कर्जदारों के बारे में कुछ सोचा है?
हेलो
परवेज, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कवामी को कहलवा भेजो।
ठीक है, अभी आया। फ्लोर के घर की तरफ चलो।
क्या हुआ डैड?
हेलो, डॉक्टर कवामी?
आज तुमने बात नहीं की कावे खान, शुक्रिया।
तुम्हारी आंटी फ्लोर के घर के पीछे, उस वक्त जब मैं भी बच्चा था और तुम भी बच्ची थी, हम अपनी जिंदगी वहीं गुजारा करते थे। हमारा एक पड़ोसी था, उसके पास एक मूर्ख था जो वक्त बेवक्त बोला करता था। नरगिस जान, नरगिस जान तो याद है ना तुम्हें? नरगिस जान कहा करती थी, जो मुर्ग वक्त बेवक्त आवाज लगाता है उसे कबाब होने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। और ऐसी हालत में जब तुम अपनी माँ के सोग में हो, मेरी हालत भी उस मुर्ग की तरह है जो वक्त बेवक्त बोलता है, और मुझे भी कबाब बनने के लिए तैयार रहना चाहिए। मुझे मजबूर किया गया है कबाब बनने पर। और ये बता दूं कि अगर मैं पूरे रास्ते चुप रहा और कुछ नहीं बोला तो मैं अपनी पूरी हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा था, और एक मिनट के लिए मेरा भरोसा लौट आए और मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं कि तुम कौन हो और तुम्हारे बाप का रौब और दबदबा क्या है, और तुम कौन हो, तुम्हारी हैसियत क्या है, और मैं कौन हूं, मेरी हैसियत क्या है, और तुम्हारे भाई के अनुज के बकौल अपना माजी और पिछली जिंदगी के बारे में भूल जाऊं कि मैं एक नौकर और यतीम बच्चा हूं। ये यतीम बच्चा अपने भरोसे को जुटाकर ये बताने की कोशिश करना चाहता है कि मेरी आवाज ना कांपे, हाथ पांव ना कांपे, कहीं जवाब ना दे जाए, कि मैं तुमसे कह पाऊं कि मैं कि तुम मुझसे शादी करोगी।
क्या करूं जेवर जान,
क्या हुआ मेरी जान?
पुलिस कहती है कि आज के बाद अहमद रजा की बजाय उसकी लाश ढूंढने की कोशिश करूं, एहतमाली कातिल को ढूंढने की कोशिश करूं जो शायद नरीमान हो सकता है, जो शायद मेरा अहमद रजा सलीम की ज्यादा चाहत की ख्वाहिश पर कुर्बान कर दिया गया हो। मेरे शौहर का दर्द तुम्हारे भाई का दर्द है, मैं क्या करूं जेवर जान?
तुम सिर्फ शायद की बात कर रही हो, एहतमाल की बात कर रही हो। यकीन के साथ कहो, खुदा पर यकीन रखो, उस पर यकीन रखो जिसने सब्र करने की सिफारिश की है। इन बातों को मुझे अपनी प्यारी भाभी को कहने की जरूरत नहीं है, है ना? अंदर आओ। इमाद आ गया। ये कौन है?
ये जबी है, अहमद रजा का चचाजात भाई, तुम्हारा चचाजात भाई।
इमाद ने बताया नहीं था?
हेलो अम्बा खानम, ये पूना घर से बाहर जा रही है।
पुनः ये तैयार होकर कहाँ निकली?
सलाम कमर खानम, आप ठीक हैं?
मैं जा रही हूँ। पहले मुझे बताओ कि कहाँ जा रही हो।
नहीं देखिए, आपका एहतराम वाजिब है, पर मैं अपने बाप के घर से इसलिए नहीं आई थी।
अच्छा,
के
तो क्या?
आप पूरी बात कहने दें तब।
माफ करना, मेरा ध्यान नहीं था, बताओ।
के मैं अपनी गाड़ी मरम्मत के लिए गैराज ले जा रही हूँ।
बहुत अच्छा, रुक जाओ, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। तुम मानोगी नहीं, मैंने अभी तक गैरेज नजदीक से नहीं देखा है। रुक जाओ, अभी आती हूँ।
ला इलाहा इल्लल्लाह।